ये दो पढ़े गए हैं। मायदा के माने दस्तरखान के आते हैं। इसमें इस वाक़े का जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके अस्हाब ने, उनके शागिर्दों ने यह दरख्वास्त की थी कि आप आसमान से अल्लाह ताला की एक दावत करा दीजिए हमारी, यानी अल्लाह ताला हमारी दावत कर दें, इसकी दरख्वास्त की थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ करने पर अल्लाह पाक ने उनकी दावत कर दी थी और बाज़ाब्ता एक मायदा नाजिल फरमाया था, उसका जिक्र है इसमें। तो कोई एक वाकये की मुनासिबत से पूरी सूरत का नाम होता है, क्योंकि आखिर में इसका जिक्र है, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह मायदा है। इसके मजामीन में से एक बात यह है कि ईमान वाले अल्लाह ताला से एक वादा करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने उस वादे को पूरा करने का मुतालबा फरमाते हैं। अब ईमान वाले अल्लाह से क्या वादा करते हैं? हदीस शरीफ में इसका मफहूम यह बयान किया गया है कि जब कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है और उसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से अल्लाह की बंदगी करने का और अल्लाह के हुक्मों को अपने ऊपर लागू करने का वादा करता है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का और आपकी सुन्नतों की पैरवी का वादा करता है। तो ये कलमा कहना, कलमे की गवाही देना एक एग्रीमेंट है असल में। ये तो उस एग्रीमेंट में जाहिर है कि बहुत सी जिम्मेदारियां आदमी लेता है, तभी कोई एग्रीमेंट होता है। तो अल्लाह पाक की तरफ से यह मुतालबा है कि तुम वादों को पूरा करो मेरे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला के शायर होते हैं, यानी अल्लाह की अजमत को जाहिर करने वाली और अल्लाह की खास निशानी के तौर पर चीज होती है, उनका खुसूसियत से लिहाज रखना जरूरी है, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना। सूरह हज में भी आगे 17वें पारे में शाइरुल्लाह का बयान अलग आ रहा है, मुस्तकिल यहां पर भी है, ला तुहिल्लू शाइरुल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला के जो शायर, शायरा की जमा है, उसके माने खास निशानी। इस्लाम की खास निशानी होती है, मुसलमान होने की खास निशानी होती है, अल्लाह तबारक व ताला का घर खास निशानी है, सफा मरवा खास निशानी है, और ऐसे ही बहुत से शायर हैं, शायर इस्लाम, जैसे अजान कहना शायर इस्लाम में से है, नमाज शायर इस्लाम में से है, खतना कराना शायर इस्लाम में से है, दाढ़ी रखना शायर इस्लाम में से है, नाखून वगैरह कटवाना शायर इस्लाम में से है। तो शायर इस्लाम बहुत सी चीजें हैं जो खास मुसलमान की निशानी के तौर पर हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने लागू किए थे और सारे नबियों पर ही थे। तो फरमाया उनका खुसूसियत से लिहाज रखो, उनकी बेहुरमती मत होने दो, ला तुहिल्लू शायर अल्लाह। कुत्ता, बिल्ली, खिंजीर नहीं, हराम जानवर को मैता नहीं बोलते, मैता उस हलाल जानवर को कहते हैं जिसको इस्लामी तरीके पर नहीं काटा गया हो और उसकी जान निकल गई। तो वो हलाल जानवर, अब ये नहीं बोल सकते कि ये जानवर हलाल है इसको हम हराम नहीं कर सकते, ये नहीं, जानवर हराम ही होता है, हलाल होने की काबिलियत उसमें होती है। यही वजह है कि खड़े हुए जानवर को आप काट वैसे ही खाना चाहो काट के दांतों से तो खा सकते हो क्या? जिंदा मुर्गी है आप दबा चबा के खा रहे हैं वैसे खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते जब तक उसको जबा नहीं करें। टाइम नहीं है, जाप का टाइम हो गया है, बकरी की टांग काट ली, पका लिए, चले गए, शाम में आके जुबा कर लेंगे उसको, हलाल थोड़ी वो। तो जानवर हलाल नहीं होते वो, लोगों को ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं कि भाई हलाल है तो इसको कोई हराम नहीं कर सकता, बेचते भी हैं, खाते भी हैं। हलाल जानवर से मुराद ये है कि उसमें हलाल होने की सलाहियत है, कि अगर कुछ शराइत के साथ में उसको जुबा किया गया तो वो हलाल होगा। और हराम जानवर उसको कहते हैं कि उसमें हलाल होने की सलाहियत नहीं है, किसी भी तरीके से उसको जुबा करोगे तो वो हलाल होगा ही नहीं। मक्के मुकर्रमा की छुरी लाके और जमजम का पानी पिला के भी जुबा करेंगे तो भी हलाल नहीं हो सकता वो, जैसे कुत्ता है, जैसे खिंजीर है, जो हराम जानवर है। हराम जानवर उनको कहते हैं कि जो हलाल होने की सलाहियत ही नहीं रखते। हलाल जानवर उनको कहते हैं कि जो हलाल होने की सलाहियत रखते हैं, राइट नाउ हलाल नहीं होते वो, उनके हलाल होने की सूरत यह होती है कि उनको इस्लामी तरीके पर जुबा किया जाए। लिहाजा अगर कोई यूं कहे कि जुबा तो इस्लामी तरीके पर नहीं हुआ लेकिन ये हलाल जानवर है, तो वो फ्रॉडी आदमी है और वो झूठ बोल रहा है और वो इस्लाम को बदल रहा है। उस गोश्त के खाने में और कुत्ते और बिल्ली के खाने में कोई फर्क नहीं है। वो हलाल जानवर, जो जानवर की किस्म तो हलाल की है लेकिन इस्लामी तरीके पर वो जुबा नहीं हुआ, उसको खाओ और पोर्क को खाओ एक ही बात है गुनाह में, दोनों में बाल बराबर का फर्क नहीं है। बल्कि उसके हराम होने को अल्लाह पहले बयान किए हैं, खिंजीर के हराम होने को उसके बाद बयान किए, और कुरान पाक में यह बताया गया है कि गोश्त के मामले में शयातीन तुमको बहुत कंफ्यूज करेंगे और अगर तुम उनकी बात मानोगे तो हम तुमको मुशरिक समझ लेंगे। वही नतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम मुशरिक हो जाओगे। तो अल्लाह के पास कुछ इसमें नजाकत है, वो क्यों है वो अल्लाह को मालूम है कि तुम्हारी भी जान है उसकी भी जान है, उसकी जान को तुम्हारे ऊपर कुर्बान करके तुमको खाने की इजाजत बहुत खास सूरतों में दी गई है। अल्लाह चाहता तो ये करता था कि इंसानों को खाने के लिए बकरियों को बना देता, कि बकरियों को कहता, बैलों को कहता कि इनको काट के खाओ, ऐसा भी सेटअप अल्लाह पाक कर सकते थे, वो तो कादिर मुतलक है। उन्होंने उन जानवरों को हमारे मुसक्कर किया, हमें उनका मुसक्कर नहीं बनाया, तो वो भी जान है हम भी जान है, हम भी अल्लाह की मखलूक है वो भी अल्लाह की मखलूक है। अब उनको खाना है आपको इंसानों को, तो उसको उसको खाने के काबिल होने के लिए उसका अल्लाह के नाम पे उसकी जान जाना जरूरी है कि वो पहले अल्लाह के नाम पे वो कुर्बान हो जाए, फिर उसके बाद में वो तुम्हारे लिए फूड बन सकता है, गिदा बन सकता है, उसके बगैर वो फूड नहीं बन सकता है। तो ये मसला बहुत नाजुक है, इस वजह से इसमें हमेशा उलमाए किराम आपको तवज्जो दिलाते रहते हैं कि जब तक कन्फर्म तरीके पर हलाल गोश्त न मिले, ज़बीहा ज़ुबह किया हुआ इस्लामी, उस वक्त तक गोश्त नहीं खाना। खासतौर पर रमजान में तो लोग बस बेहतियातियां करते हैं, तो क्या फायदा है, रोज भूखे रहने से तो कुछ फायदा नहीं है। अल्लाह ताला को भूखे रहना मकसूद थोड़ा ही है कि हम भूखे रहें, मकसूद तो एक इबादत है जो अल्लाह ताला की मर्जी के मुआफिक अंजाम पाना है। ऐसे ही ये बयान फरमाया गया कि अहले किताब का खाना भी तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, तो अहले किताब का खाना भी हलाल है, उससे मुराद ज़बीहा ही लेते हैं उलमा। तो जुबा करने वाले इंसानों में मुसलमान भी हो सकते हैं, अहले किताब भी हो सकते हैं, उनका जुबा किया हुआ भी हलाल है। लेकिन जुबा होने के लिए तीन शर्तें और हैं, वो अहले किताब अगर तीन शर्तें पूरी करे तो फिर ये जानवर जबीहा हो जाता अपना, मुसलमान ही काटना शर्त नहीं है, काटने वाले में मुसलमान भी हो सकता अहले किताब भी हो सकता। लेकिन अहले किताब के लिए भी जरूरी है कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोले, पहले जमाने के अहले किताब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलते थे, उसके बगैर खाना उनके पास हलाल नहीं था, और गले के ऊपर काटना जरूरी है, तीन रगों का कटना जरूरी है, जानवर सही होना यानी हलाल होना, गले पर काटना, गर्दन की तरफ से नहीं काटना, एकदम झटके से नहीं, जिसको बोला ना मौकूदा मुतरदिया व नतिहा, वो शक्ल नहीं होना जानवर के मरने की, गले पर काटना और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलना, और अल्लाह अकबर अगर नहीं बोल सके जल्दी में तो कम से कम बिस्मिल्लाह बोलना। अभी हम लोग जिस जगहों पर जा रहे हैं सलाटर हौदों वगैरह पर, वहां पे काटने वाले को अल्लाह अकबर बोलने का टाइम नहीं है, उन्हें बिस्मिल्लाह बोल दिया तो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम लोग। तो बिस्मिल्लाह उलमा ने लिखा है कि अगर बिस्मिल्लाह बोल दिया तो भी हलाल है, लेकिन मुस्तहब मसनून ये है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोले पूरा। और चौथी यह है कि काटने वाला या मुसलमान हो या किताबी हो, ये बात फरमाई गई। अब चूंकि इस जमाने के अहले किताब वो तीन शर्तों को बकिया पूरे नहीं करते, इसलिए अहले किताब का काटा हुआ अब जायज नहीं होता। ऐसे ही फरमाया कि जो अहले किताब की लड़कियां हैं उनसे तुम शादी कर सकते हो, मुसलमानों की लड़कियों को अहले किताब से शादी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, इस्लाम में कभी जायज नहीं हुआ ये, मुसलमान बच्चे ईसाई से शादी कर ले रही, वो तो होती नहीं। हमारे पास ऐसे आते हैं लोग, हम बोलते हैं कि भाई शादी करे बगैर रह जाओ थोड़े दिन, गुनाह ही कर रहा है ना, गुनाह ही करो, शादी करके शादी का नाम लेके गुनाह में क्यों पड़ते हो, वैसे ही गुनाह करते रहो, अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा, वो गनीमत है वो, क्योंकि उसको भी फीलिंग होता, सारी दुनिया को भी फील होता कि गैर शादीशुदा तरीके पर रह रहे हैं। बोलते शादी करके रहने में ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप, कह रहे हम तो मजहबी एतबार से सही है, हालांकि वो भी हराम ही है। तो मुसलमान और बच्ची को तो अहले किताब को शादी कर ही नहीं सकते, कभी उसकी इजाजत हुई नहीं इस्लाम में, ना पहले थी ना अब थी। مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت تھی، شروع میں تھی، اور بعد میں اس کو منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی حدیثوں میں دوسری جگہوں پر تفصیل سے موجود ہے جو اس وقت پوری نہیں ہوتی، اس لیے اس زمانے میں اہل کتاب سے شادی مسلمان کی نہیں ہوتی اور جائز نہیں ہے. اہل مسلمان مرد ہو اور اہل کتاب عورت ہو تو بھی جائز نہیں ہے. وضو کے اور غسل کے کچھ مسائل بھی سورہ مائدہ میں بیان فرمائے گئے ہیں. ایک حکم یہ دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم ہمیشہ انصاف کی بات بولنا، چاہے تمہیں اپنے خلاف میں بھی بولنا پڑے، اور اس واسطے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کا کام انصاف پر کھڑے رہنا ہے، انصاف کی بات کو بولنا ہے. کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف کی بات بولنے سے روکے نہیں. جو اعتدال اور عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، قوم کی دشمنی میں نہیں بولنا ہے. قوم کی دشمنی کا مطلب ہوتا ہے عصبیت جاہلیہ، تعصب، ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارے لوگ، ہماری فیملی، ہمارا خاندان، ہمارے بچے، اس کی وجہ سے ان کا ساتھ دینا، چاہے وہ غلطی پر ہوں چاہے وہ حق پر ہوں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بہت تاکیدی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کا قصہ ہے، حابیل کا اور قابیل کا، وہ بھی سورہ مائدہ میں ہی بیان کیا گیا ہے. آپ کو معلوم یہ ہے کہ قابیل ایک بیٹا ان کا تھا اور حابیل ایک بیٹا تھا. حابیل بڑا بھائی غالباً تھا اور قابیل چھوٹا بھائی تھا. قابیل کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا بدنیتی آ گئی تھی، حابیل جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ تھا. اس میں کون غلطی پہ ہے کون نہیں پہچاننے کے لیے بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو قاف سے ہے نا وہ قاتل ہے، جو ہا سے ہے نا وہ ہدایت پہ ہے. کیا ہے بولو؟
یہ ٹوئٹا کیمرے جس کے اوپر مشیگن لائسنس پلیٹ ہے لگی ہوئی، اور وین ہے وتھ باکسز، یہ ڈبل پارکڈ ہیں فرسٹ کمرشل بینک کے اندر. اس کو برائے مہربانی ہٹا لیں.
ڈبل پارک تو ویسے ہی مت کرو بھائی. اور اگر جو بے اصولی ہم کر رہے ہیں، اگر بینک والوں نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں کر سکتے، تو بتاؤ کس قدر اپنے لیے نقصان کی بات ہو جائے گی. پتہ ہے کل کسی نے کہاں پہ پارک کیا تھا؟ بہت سب کو نہیں پتا ہوگا، اے ٹی ایم کے ڈرائیوے میں پارک کیا ہوا تھا کل. باہر نہیں کرتے ایسا، ڈاؤن ٹاؤن میں نہیں کرتے، حکومت کے اداروں میں نہیں کرتے، عدالت میں گئے تو نہیں کرتے، پولیس بلائی تو گئے تو نہیں کرتے. یہ مذہب کے لیے نماز پڑھنے کو آئے تو یہ سدھرتا ہے، یعنی ہم کسی سے نہیں ڈرتے، جان دے دیں گے اس کے لیے. پتہ نہیں کون سا مذہب ہے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی. ٹھیک ہے دور پارک کرنا پڑا، دور پارک کر لو، مگر دوسروں کے لیے ہیڈک تو نہ بنو، مسئلہ تو نہ پیدا کرو. تو یہ بہت ضرور. اچھا یہ پرابلم کرتے کون ہے معلوم؟ جو پہلے آئے وہ نہیں کرتے، وہ بعد میں جو گڑبڑ میں آتے نا، ہڑا ہڑی میں، جن کی نماز جا رہی ہوتی ہے، جماعت جا رہی ہوتی ہے، بس انہیں کہیں گاڑی گھسا کے فوراً آنا ہوتا ہے. اور ہم ساری نصیحتیں ہدایتیں پہلے والوں کو سناتے رہتے ہیں، وہ دوسرا والا نہ پہلے سنتا نہ بعد میں سنتا. اچھا وہ آتا ہے بعد میں، اور جو بیچارہ پہلے سے اپنی پارکنگ کی لحاظ سے نماز پہلے پڑھنے کے لیے، وقت پر ادا کرنے کے لیے پہلے سے آیا، پھنستی کس کی گاڑی ہے؟ اسی کی ہے. یہ عجیب مصیبت ہے. تو اس وجہ سے میرے دوستو، جو چاہے پہلے آنا ہو چاہے بعد میں ہو، یہ دیکھ لیں ہم کہ ہم کسی کو ہرٹ نہ کر رہے ہوں، گاڑی کسی کی بلاک نہ ہو رہی ہوں. تو ہوا یہ کہ یہ جو قابیل ہے جو کہ قاتل ہے، حابیل ہے جو کہ ہدایت پر تھا، اس کو اس نے مار دیا. قصہ اسرائیلی روایت میں ہے زیادہ کہ وہ کیا قصہ ہوا تھا، کیا کہانی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ بہرحال دونوں بھائیوں کی لڑائی نہیں ہوئی، ایک بھائی نے دوسرے سے لڑائی کی. دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی کہ یہ اس سے لڑ رہا تھا وہ اس سے لڑ رہا تھا، بلکہ ایک ہی بھائی دوسرے سے لڑ رہا تھا. دوسرے نے کہا کہ تو مجھے مار بھی دے گا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو مجھے جان سے بھی مار دے گا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس کے باوجود اس نے اس کو جان سے مارا. اور اس زمین کے اوپر انسان کا پہلا خون تھا وہ. اس سے پہلے نہ کوئی انسان مرا تھا، نہ اس سے پہلے کسی انسان کا مرڈر ہوا تھا. پہلی موت جو واقع ہوئی ہے وہ حابیل کی ہوئی ہے زمین کے اوپر انسانوں میں سے. تو وہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اب اس کا کرنا کیا، جان تو نکل گئی اس کا کرنا کیا یہ نہیں معلوم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابًا. کوے ہم سے بھی پہلے سے ہیں. یہاں پر اسی جگہ پر آگے ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض، जितने चौपाए हैं, वला ताइर यतीरु बिजनाही, जितने परिंदे हैं जो अपने परों से उड़ रहे हैं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह उम्मतें हैं, वो तुम्हारी तरह ही उम्मतें हैं वो। तो अभी अल्लाह ही को मालूम है कि उम्मत उनके अंदर किस किस्म की फहम है, कैसे उनकी बातचीत होती है, कैसे उनका दीन और ईमान है, क्या उनका तर्ज, क्या क्या चीजें उनके अंदर हैं, अल्लाह ही को मालूम है उसकी तरफ से। हजरत सुलेमान, बास पैगंबरों को बिलखुसूस सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारे जानवरों की बोली, सारे परिंदों की बोली आती थी, अल्लाह ने बतौर मौजिज़े के उनको ये चीज मरहमत फरमाई थी। लेकिन कुरान पाक में यह है कि इल्ला उममुन अमसालुकुम, ये तुम्हारी ही तरह उम्मतें हैं। तो हुआ यह कि एक कौवा जो है वो आया और वो अपने साथ अपने मरे हुए एक कौवे को लाया। उसका एक कौवा मर गया था, यानी उसका एक भाई मर गया था। तो उसने जमीन को अपने पंजों से खोदा, फिर उसके बाद में अपने भाई को जो मरा हुआ था उसमें उसको लुढ़काया और मट्टी जो है ना उसके ऊपर कर दी। इससे पता चला काबिल को कि ओहो, अगर कोई मर गया तो ऐसा करना है। तो उसने कहा, आजस तो अन्तकुना हादल गुराबी फ़ुवारिया सवताखी, قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوار يا سوت اخي فاصبح من النادمين, कहने लगे मैं तो इस कव्वे से भी गया गुजारा हो गया कि मुझे ये तक नहीं मालूम था कि जिस्म इंसान के जिस्म को कैसे छुपाया जाता है, उस पर उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई। बहरहाल उसने उस तरीके से तदफीन की। इससे एक बात यह भी मालूम हो गई कि इंसान को दफा करने का नेचुरल तरीका वो असल है मिट्टी में उसको दफन करना। जो लोग जलाते हैं वो भी गलत है, और जो लोग जलाते नहीं बल्कि बॉक्सेस में रख दें जाहिर है कि वो कितना सही होगा वो तो आपको पता ही है। असल तरीका इंसान के खत्म हो जाने की सूरत में उसको मिट्टी में दबा देने का है, जो इस्लाम का बताया हुआ इस्लाम का तरीका है और पहले से भी यही है जब से इस दुनिया में इंसान आया है। लेकिन वो जो गलती काबिल ने की, कत्ल का गुनाह उसको जाता है, पहले गुनाह उस कत्ल का उसको जाता है, उसके बाद कातिल को मिलता है। और यह नहीं कि बटने की वजह से कम हो जाता है गुनाह, उसका हिस्सा उसको मिलता है कि सुन्नत उसी ने डाली है, तरीका उसी ने डाला है। और यह भी आदमी अपने तौर पर जिम्मेदार होता है, चाहे उसने सिखाया हो ना सिखाया हो, दुनिया को पता तो वैसे ही चला है। और फिर हमने ये उसूल बनाया कि किसी एक इंसान को जिंदा होने का सबब बनना सारे इंसानों को जिंदा होने का सबब है, और किसी एक इंसान को मारने का सबब बन जाना सारे इंसानों को मारने का सबब है। इससे इस्लाम में एक बहुत बड़ी बुनियाद मुकर्रर है, दूसरी जगहों पर भी इसका जिक्र तफसील से है। वो ये है कि इस दुनिया में जैसे नेक काम करना एक अमल है, नेकी है, नेक काम का सबब बनना वो भी एक नेकी है। अब ये सबब जिस लेवल पर होगा, यानी जितने नेक काम का वो सबब बनेगा जितने ज्यादा, वो सारे नेकियों का सवाब उसको मिल जाएगा। बुरा काम करना एक बुराई है और बुरे काम का सबब बनना एक बुराई है। अब वो सबब भी जितने बुरे ज्यादा कामों का बनेगा, जितने बुरे काम वजूद में आएंगे सबका गुनाह उसको हो जाए। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तौबा लिमन काना मिफ्ताहन लिल खैर व मिगलाकन लिशर, खुशखबरी उस आदमी के लिए है जो खैर की चाबी बने, खैर का रास्ता खोलने वाला बने और शर का दरवाजा बंद करने वाला बने। और हलाकत है उसके वास्ते जो शर का रास्ता खोलने वाला बने और खैर का दरवाजा बंद करने वाला बने। और अल्लाह ने यह उसूल बनाया है कि जो खैर का जरिया बनेगा उसको 10 अज़ाफ करके 10 से मल्टीपल करके दिया जाएगा, और जो शर करेगा उसको जितना शर वजूद में आया है उतना ही दिया जाएगा। मगर यह एक बहुत बड़ी बात है कि अपने अमल में, अपनी जान से, अपने माल से, अपने पैसे से, अपनी सलाहियत से हम अगर खैर का सबब बन जाएंगे तो खैर के रास्ते खुल जाएंगे। और उसके अंदर अल्लाह ने सेटअप यह रखा है कि अगर आदमी मर भी गया और उसने खैर का, वो खैर का सबब बन के गया है, तो जो खैर उससे वजूद में आता रहेगा उसकी कब्र में वो सवाब पहुंचता रहेगा। कब्र में आदमी को दो तरफ से दरवाजा खुला रहता है, दुनिया से भी और उधर आखिरत से भी। दुनिया से ऐसे खुला होता है कि कुछ ना कुछ फायदा उसको पहुंच सकता है, पॉसिबल है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता लेकिन कुछ करके गया है जिसकी वजह से उसको बाबाबता आमदनी और इनकम हो रही है, ये हो सकता रहे। और उधर कब्र आखिरत से दरवाजा खुल जाता है कि अगर आदमी नेक है तो अच्छी चीजें उसकी तरफ आती रहती हैं, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, खिड़कियां खोल दी जाती हैं, बिस्तर बिछा दिया जाता है, हवाएं आती रहती हैं, खुशबूदार नेमतें आती रहती हैं, जन्नत खबर को कुशादा किया जाता है, आखिरत का दरवाजा भी खुलता है जन्नत के एतबार से हो या जहन्नम के एतबार से, और दुनिया का भी एक दरवाजा अकाउंट उसका खुला हुआ होता है। तो इस दुनिया में कोई आदमी खैर का सबब बनेगा, जितना खैर वजूद में आएगा। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका जारिया की तरगीब दी है, मस्जिदें बनवा देना, मदरसे बनवा देना, सराये बना देना, रेस्ट एरिया जो होते ना, दूसरों ने सीखा हुआ है रेस्ट एरिया बनाने का। हालांकि इस्लाम में सबसे पहले इसकी तालीम और तरगीब दी गई है कि मुसाफिर खाने बनाना, लोगों को पानी का इंतजाम कर देना, पानी फराहम कर देना कि लोग मुसलसिल पानी पी रहे हैं, इबादत की जगह बना देना, इल्म फैलाने के वास्ते किताबों का छाप देना, आलिम तैयार कर देना, हाफिज तैयार कर देना, ये सब सदक़े जारिया की किस्म में है कि आदमी अगर मर भी गया तो ये जितने खैर उसके जरिए से, एक हाफिज मसलन आपने बना दिया, वो पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़े, कितना भी पढ़े और कितनों को भी पढ़ाए, वो बराबर उसका सवाब जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको मरहमत फरमाएगा। क्या हुआ, तीन गाड़ियां हैं, कौन कौन सी? इधर लाओ नंबर बताओ इनके का। उसका बेहतर तरीका यह है कि भाई उसको उनको वो करा दो, टो करा दिया जाए बस, जो गाड़ी ब्लॉक करे खासतौर एटीएम को तो उसको तो टो करा दें। एक बात यह भी है कि वो बोस्निया वाले भी कर रहे हैं उधर, तो हो सकता है उनकी तरफ से हो रही हो वो बात, पॉसिबल है। नंबर नहीं लिखा है इसमें भाई, हमारे साथियों में से सबको पता है कि किसने कहां पे पार्क किया है। अगर कुछ ऐसे साथी हों जिनकी गाड़ी वहां ब्लॉक कर रही हो किसी को, तो बराए मेहरबानी उसको हटा लीजिए, वरना वो बंद हो जाता है देखो एक दो दिन में। अगर ऐसी हुआ तो जाहिर है कि वो लोग मना कर देंगे, मना भी करेंगे, हमारी बदअखलाकी का भी अच्छा तासर हो जाएगा कि भाई कितने बदअखलाक लोग हैं। एक मजमून ये बयान फरमाया गया सूरह मायदा में कि अल्लाह तबारक व तआला के करीब होने के जो असबाब हैं उनमें जद्दोजहद करो, मेहनत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वबतग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो जरिया है अल्लाह तक जाने का वो इख्तियार करो। और उसकी सूरत यह बयान फरमाई, वजाहिदु फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो, जद्दोजहद करो, कोशिश करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून। चोर की जो है वो सजा बयान की गई सूरह मायदा में ही। इस्लाम में चोर की सजा क्या होती है? अहले किताब के साथ में ताल्लुकात और उनसे दोस्ती करना, उनके साथ में सुलूक रखना, मामला रखना, इसकी बड़ी तफसीलात बयान फरमाई गई हैं सूरह मायदा के आखिर में। चूंकि सूरह मायदा में है ही ईसा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक वाकयात, तो फिर उसमें उसकी तफसीलात भी हैं। और फिर मुसलमानों को खसूसियत से यह तालीम दी गई है कि मुसलमान उनके साथ में किस तरीके का मामला और बर्ताव करेंगे, उसमें बहुत वाज़ह अंदाज में हिदायतें दी गई हैं। एक उसूल यह है इस्लाम में जो बताया गया, अल्लाह ने अपनी हिकमत और मसलहत से आजमाइश के तौर पर दुनिया में तीन रास्ते रखे हुए हैं कयामत तक। एक रास्ता मखसूस निशानियों के साथ होगा यहूदियों का, एक रास्ता मखसूस तरीक तहजीब और तमद्दन के साथ होगा ईसाइयों का, एक रास्ता मखसूस तौर तरीक के साथ होगा मुसलमानों का। ये कयामत तक होगा, क्योंकि इम्तिहान की जगह होने की वजह से यहां पर तीन रास्ते जरूर अल्लाह ने रख दिए, कि वरना एक ही रास्ता अगर अल्लाह ताला रखते तो इम्तिहान कहे का लिया जाता, उसके बाद इम्तिहान इसलिए मुख्तलिफ रास्ते रखे, इम्तिहान इसलिए लिया जाता है कि बंदा इधर चलना चाहे तो इधर चले, उधर चलना चाहे तो उधर चले। सूरह फातिहा में कल जो परसों बजाय अर्ज किया गया था आपसे, वो ये कि हम हिदायत वाला रास्ता मांगते हैं, प्लस उसके साथ ये चीज ऐड करते हैं कि हमें ना यहूदियों के रास्ते पे चलाइए ना ईसाइयों के रास्ते पे चलाइए, क्योंकि वो आसमानी किताब होने का दावा करते हैं तो उनका एक रास्ता है। फिर भी दूसरे जो इसके अलावा मलाहिदा का, दहरियों का, जिंदीकों का, मुशरिकों का, बुद्धिस्टों का और बुतपरस्तों का, वो रास्ते तो ऐसे हैं कि थोड़ी भी अकल आदमी के पास है तो आदमी खुद ही नहीं चलता। अब हमारे पास हिंदुस्तान में मुशरिकीन का जो रास्ता है, अगर उनकी तफसील कोई आदमी देख लिया तो वो खुद ही नहीं चल सकता। सुबह उठते ही सबसे पहले गाय का पेशाब पीते हैं थोड़ा सा, जिसके घर में गाय बनी हुई होगी वो पेशाब कर रही होगी, खुद भी भागते हुए, हमने अपने आंखों से देखा हुआ है, उनके बच्चे भी भागते हुए जाते हैं और उसके पीछे ही हाथ लगा लेके थोड़ा सा पी लेते हैं। और ये कोई पुराने जमाने की बात नहीं है, अब भी आप मुशाहिदा कर सकते हैं। वो गाय का पेशाब प्याली में, तश्तरी में लेके आते हैं और मिठाई की दुकान वाले मिठाइयों पर छिड़क देते हैं। हिंदुओं की दुकान से मिठाई नहीं लेना, इसलिए गैर मुस्लिम जो है ना तबर्रुक, उनके पास तबर्रुक है गाय, तो उसका पेशाब भी तबर्रुक है, तो वो मिठाई के ऊपर भी छिड़क देते हैं फुजान। अब वो क्या एतबार से आप ये करेंगे? वो जो शादी के मौके पर औलाद अगर नहीं हुई तो जो हरकतें उनके पास है, इस कदर बेहुदा मजहब है कि उसको, यानी उसको फॉलो नहीं करने के वास्ते खाली देख लेना ही बस हो जाता है। नफरत होने के लिए मैं आपको बता देता हूं, बाद ऐसे बुत हैं कि वो अज़्वे तनासुल के साथ बने हुए हैं, जिस कपल के औलाद नहीं होती है वो उस पर जाके बैठना। आप आंखों से इसका मुशाहिदा कर सकते, अमल का मुशाहिदा नहीं कर सकते, वहां चीज बनी हुई है और वो इस काम के लिए है, बल्कि आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है बाज़ाब्ता। क्या तुक है वो, कौन सा ऐसा है? वो हर साल गणेश के नाम से उठाते रहते हैं, गणेश बनाते रहते हैं, फिर उसको उसका जुलूस निकालते हैं, फिर उठाते रहते हैं। वो गणेश ऐसा होता है कि उसके नीचे जो है ना सुराख होता है, गणेश पूरा एक ढांचा बना हुआ है आदमी का, उसके नीचे सुराख है। अब जितने छोटे भी बनते हैं वो बड़े भी बनते हैं, जो बड़े बनते हैं वो तो खैर बड़े उस पर रखे जाते हैं, जो छोटे बनते हैं ना वो छोटे बच्चों के लिए भी बनते हैं, नौजवानों के लिए भी बनते हैं, औरतों के लिए भी बनते हैं। उसको पकड़ते कैसे मालूम है? उसके नीचे से हाथ डाल के पकड़ते, उसको अपना ही खुदा है और उसी के हाथ डाले हुए अंदर में। कौन पूजा करेगा इसकी, आप बताइए, कौन इसको फॉलो करेगा? तो वो एक ऐसा मजहब है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है उसके खराब होने। ये वो लोग हैं जो आसमानी तालीमात और आसमानी हिदायत के होने के अलमबरदार हम होते हैं, और इनके पास जाहिरी असबाब के एतबार से अल्लाह ने वसाइल भी दिए हुए हैं, इसलिए भटकने के चांसेस हैं। अह मुसलमान भाइयों, इस बात को बहुत केयरफुल से सुनो और अपनी औलाद के लिए भी ध्यान में रखो कि तीन किस्म की तहजीब है, तीन किस्म का तमद्दुन है, तीन किस्म का कल्चर है, तीन किस्म की मुआशरत है, तीन किस्म के मामलात हैं, तीन किस्म की इबादतें हैं, तीन किस्म के अकीदे हैं, तीन किस्म के अखलाक हैं। ये तीन किस्म के पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह को इस्लाम वाली चीज पसंद है और हमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया, इसलिए हमें हर हर चीज में जो इस्लामी तालीमात हैं उनको जान लेना है, सीख लेना है और फिर उसके मुताबिक अमल करना है। जो ये करके अल्लाह के पास चले गया बस वही कामयाब है। उसको बहुत तफसील से इसमें सूरह मायदा के अंदर बयान फरमाया गया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और गलत रास्तों से हिफाजत फरमाए। اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ورحمة الله.